हम सब के बहुत प्यारे परम कल्याणकारी शिव बाबा, हम बच्चों को एक मंत्र देते हैं। महामंत्र भी बाबा कई बार उसको बोलते हैं, और वो भी ऐसा महामंत्र जो दूसरा कोई दे नहीं सकता। कभी कभी कोई गीता पढ़ते हैं तो उसमें दो एक बार उसका वर्णन आता है उस महामंत्र का, परंतु बाबा कहते बच्चे इस दुनिया में कोई भी उसका अर्थ नहीं समझते हैं। क्या हो सकता है वो महामंत्र? मन मना भाव है ना। अब हम लोगों को इतना पता है कि मन मना भाव माना, बाबा को याद कीजिए, अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, ये हम सब के लिए एक कॉमन अर्थ है ना। परंतु यह महामंत्र कैसे होता है? महामंत्र, बीज मंत्र, तारक मंत्र, या ऐसा मंत्र जिससे कि मनुष्य का जीवन तर जाए, मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ हो जाए, मानव जो कल तक विकारी कीड़ा था वह निर्विकारी देवता बन जाए, और वर्तमान में अपने जीवन को धन्य समझे। ये जो गायन है, मानव जीवन अमोलक रे, उसका अनुभव करे, तो वो हम बाबा के बच्चे करते हैं कि हमारा जीवन अमूल्य है। माना कि कहा गया 84 लाख जीव राशियों में मनुष्य श्रेष्ठ, परंतु कैसे ये नहीं कहा गया, क्योंकि वर्तमान समय यदि हम देखें तो मनुष्य, बाबा ने कल कहा पता नहीं ये लोग क्या क्या खाते हैं, और एक शब्द बहुत बाबा ने कल कहा कि आदमखोर बन जाते हैं। मैं नहीं समझता आप लोगों में से कितने लोग आदमखोर शब्द को, आदमखोर शब्द कोई समझते हैं? हाँ, तो आदमखोर माना, हम जब छोटे थे तो कहा जाता था गांव में आदमखोर आता है। वो आदमखोर क्या करता है? मनुष्य के स्थान को पकड़ करके उसमें से सिर्फ खून चूस लेता है, मनुष्य जैसा कर ऐसा ही बच जाता है, उसको वो लोग आदमखोर कहते, जो आदमियों को खा जाए दूसरे शब्दों में। तो ऐसा आज मनुष्य मनुष्य के लिए वैरी बना हुआ है। हालांकि एक विशेषता है कि कोई भी प्राणी अपने जाति के प्राणी को नहीं मारता है, परंतु आज मनुष्य अपने ही मनुष्य जाति का वैरी बना हुआ है। वैसे समय पर गीता की उपयोगिता क्या हुई, जो जन्म जन्मांतर हम पढ़ते आए, मन मना भव मध्याजी भव माम एकम स्मर बोलते आए, परंतु अर्थ न मालूम होने के कारण बाबा जैसे कहता है तोताराम जैसा हो जाता है, वैसा मनुष्यों का जीवन या हमारा जीवन कल तक था। पर आज हम जानते हैं कि ये मन मना भव बाबा जब हमको बोलते हैं तो एक तो सहज जो अर्थ सर्वे सामान्य रीति से सब लोग जानते मानते हैं वो है अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। परंतु वहां पर आप देखेंगे गीता में जो मन मना भव है, या उसको यदि विश्लेषित करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो वो होता है मत मना भव। तू हे मनुष्य, हे आत्मा या हे बच्चों, मत मना भव, मैं जैसा सोचता हूं ऐसा तू सोच वाला बन। ये मन है ना, मन, जैसे आप हमको सब 7 डेज कोर्स में पहला लेसन जब देते हैं ना आत्मा का, तो उसमें पहले वो आत्मा दिखा करके नीचे में 3 पेंडुलम दिखाते, मन और बुद्धि और संस्कार। मैं कई बार कई मनोवैज्ञानिकों से पूछता हूं कि भैया मन क्या चीज है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक माना मनोविज्ञान, मन के विज्ञान को जानने वाले, द साइंस ऑफ माइंड उसको कहते हैं, साइकोलॉजी। परंतु वो अभी तक भी मन क्या है नहीं बता पाए। हमारे भी साहित्य में, उपन्यासों में, काव्यों में, नाटकों में मन का बहुत प्रयोग हुआ है, मन के ऊपर ढेर सारी पुस्तकें बनी हुई हैं। परंतु ये मन क्या चीज है, हम भी बोलते हैं हमारा मन मायूस है, मन मलिन है, मन में एकाग्रता चाहिए, है ना, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। परंतु ये मन आखिर भी शरीर में कहाँ है क्या? तो मन रूपी कोई ऐसे अलग से चैतन्य सत्ता है नहीं। आत्मा जो मैं हूँ, मैं जो आत्मा हूँ, आत्मा जो मैं हूँ, मैं जो आत्मा हूँ, आत्मा जो संकल्प करती है, उसको एक सुंदर शब्द दिया गया मन। आत्मा जो संकल्प करती है उसका नामकरण हुआ मन। अब ये आत्मा जो संकल्प करती है, अभी आत्मा कोई दूसरी तो है नहीं। हमको यहाँ ज्ञान मिला कि वो आत्मा मैं ही हूँ। अब जो मैं आत्मा हूँ और मैं जो संकल्प करती हूँ, वो जो भी संकल्प हैं, आज हम देखते हैं सारे के सारे संकल्पों का जोड़ या संकल्पों का योग या संकल्पों का संबंध किसके साथ है? देह के साथ है, देह के संबंधियों के साथ है, देह के वैभव और पदार्थों के साथ है, उससे जुड़ा हुआ है। मैं जो सोचता हूं उसको मन बोलते हैं। मेरी सोच, अब तक भी हम देखते हैं इतने वर्षों के बावजूद भी ज्ञान में रहने के, ऐसा महसूस होता है कि हम जो सोचते हैं विशेष करके साधारणतया वो शारीरिक रीति से, शारीरिक के संबंधी रीति से, अपने वैभव, इवन हम समझते हैं यज्ञ में जो रहते हैं, समझिए केंद्र संभालते हैं, तो भी उनको भी चिंता होती है कि हमारा केंद्र कैसे बढ़ेगा, बड़ा कैसे होगा, केंद्र से और केंद्र कैसे खुलेंगे, उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। मतलब पदार्थों के बारे में सोच अधिक से अधिक चलती है मनुष्य की या हम आत्माओं की। अब बाबा हम बच्चों से ये कह रहा है कि भगवान, ऐसा गायन है कि भगवान को संकल्प आया। क्या संकल्प आया? कि अब मैं नई दुनिया रचूं। तो नई दुनिया रचने का संकल्प भगवान बाबा को, शिव बाबा को आया। तो शिव बाबा ने क्या किया? तो बाबा खुद गीता में कहता है कि मैंने तदात्मानम सृजामि अहम्, अहम तत् आत्मानम सृजामि, मैं उस आत्मा का सृजन करता हूँ। ये बहुत सुंदर वाक्य है, जो कोई भी ऐसा विश्लेषण नहीं करते हैं। शास्त्री लोग भी, उनको भी वो तत् आत्मानम का अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे ही बोलेंगे कि जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब तक भगवान का अवतरण होता है। परंतु वहां स्पष्ट है कि मैं ऐसी आत्मा का सर्जन करता हूं जो ये सृष्टि के रचना के कार्य को आगे बढ़ा सके। क्योंकि सृष्टि की स्थापना, नए संसार की स्थापना, पालना और विनाश, इसके लिए त्रिमूर्ति कारण भगवान ने बनाया है। भगवान जो भी कर्तव्य करते हैं वो किसी सामने कारण को रख के करते हैं, अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। अभी भी बाबा कहता है करता तो मैं हूँ परंतु तुम बच्चों को माध्यम बना के करता हूँ। बच्चे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को तो हाथ पैर है नहीं, बोलने के लिए मुंह मुखड़ा है नहीं, तो मैं क्या करूँ? मैं जो भी करूँगा बच्चों के माध्यम से ही करूंगा ना, तो इसीलिए परमात्मा ने, शिव बाबा ने क्या किया, तद आत्मा, उस आत्मा का सृजन किया जो कि ये सृष्टि की नई संरचना के लिए माध्यम बन सके, ऐसा बाबा कहता है। तो वह आत्मा हुई प्रजापिता ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा का पहले बाबा ने सर्जन किया, ब्रह्मा को बनाया, क्योंकि वह था। बाबा कई बार कहता है ये जो दादा लेखराज है, इसके जन्म से ही मेरी दृष्टि इसके ऊपर थी, तभी तो जाकर के यह भुगरे बेचने वाला गांव का छोरा जाकर के वज्र वैडूर्य का व्यापारी बना। 1930s में वो कोट्याधीश बना। तो बाबा कहता है वो इसलिए कोट्याधिपति बना, करोड़ों रुपये का यजमान बना, ताकि उसके माध्यम से यह यज्ञ की स्थापना हो सके, और बाहर के सहयोग के बिना 300-400 माता बहनों का पालन लालन बहुत रायल रीति से 14 साल तक चल सके, है ना? 1936 से लेकर के 1950 तक बाहर से कोई पैसा नहीं आता था। कौन देगा ऐसी संस्था को, मंडली को, जो पवित्रता का प्रचार करती हो, जो खानपान की शुद्धि का प्रचार करती हो? तो वो कोई विरोध ही विरोध था। तो जो था वो बाबा अपने बलबूते पर ये सारा कार्य चल सका। इसीलिए बाबा कहता है ऐसे गांवड़े के छोरे को मैंने करोड़पति बनाया। तो नजर वहां थी, तो बाबा ने उसकी सृष्टि की। आप देखेंगे कि 14 साल तक बाहर का लिए बिना वो कोई 300-400 लोग रहे, और वो भी बहुत रायल। दादियां कहती हैं बाबा ने हमको, जैसे हम लोग थे, आपको पता है कि ये सिंध प्रदेश में ये भाईबंद समाज होता है, भाईबंद समाज सिंधियों में ही एक तबका जो बहुत श्रेष्ठ बड़े व्यापारियों का था, जो विदेश में रह करके व्यापार करते थे। ऐसे समाज के कृपलानी जो उस समाज का, जैसे बाबा मुरलियों में कहता है हर बच्चे हर जाति में ब्राह्मण होते हैं, ऐसे ही इस सिंध जाति में भी ये कृपलानी परिवार है ना, ये ब्राह्मण परिवार है। बाबा का अभी भी एक लौकिक पुत्र बॉम्बे में रहता है, दादा नारायण, वो कहता है शराब की बूंद भी शर्ट पे पड़ेगी, शर्ट निकाल देंगे और स्नान करके फिर हम दूसरा काम करेंगे। कितनी पवित्रता बरती जाती इनके जीवन में। तो ऐसे परिवार में बाबा, शिव बाबा ने ऐसे परिवार में रहे हुए व्यक्ति को अपना माध्यम बनाया और कहा कि मानुषिम तनुम आश्रितम, मैंने क्या किया, मनुष्य तन में आश्रय लिया, क्योंकि मेरा अपना तन नहीं है, मैं निराकार हूं, माना आकार रहित नहीं, मैं ज्योतिबिंदु हूं, परंतु मैं ज्योतिबिंदु कुछ करना चाहूं तो मुझे ये शरीर चाहिए। तो मैंने इस मानुष्य शरीर में प्रवेश किया और मनुष्य की भाषा में नए सृष्टि के लिए जो संकल्पों की संरचना करनी चाहिए, ऐसे संकल्पों को पहले पहल उस प्रजापिता ब्रह्मा के मस्तिष्क में भरा कि क्या नया युग हो सकता है, उसमें कौन आ सकते हैं। तो जैसे बाबा ने उनको साक्षात्कार कराया महाविनाश का, कि कैसे ये पंच तत्व एक साथ विनाश के लिए कारणीभूत होते हैं। अभी तो हमने एक हुड़हुड़ देखा, हुड़हुड़ भौचाल आया ना, वो ओडिशा आंध्र प्रदेश तरफ, इधर नीलोफर बोल करके पाकिस्तान तरफ, ऐसे ये जल का हम देखते हैं, जल थल वायु और अग्नि, ये चारों ही तत्व एक साथ जब धावा बोलेंगे तब मनुष्य चरमरा जाएगा। ऐसे समय पर बाबा कहता है संकल्पों की जो रचना हो वो शुद्ध सात्विक और खुशी वाली होनी चाहिए। जैसे बाबा कहता है मिरवा मौत मलु का शिकार, समझते हैं मिरवा मौत मलु का शिकार, जिसको ये कन्नड़ भाषी बोलते हैं इली के प्राण संकट बेकी के चल्लाट। तो ऐसा बाबा ने हमको सबको तैयार करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से ये ज्ञान देना शुरू किया। तो ज्ञान और कुछ नहीं है, ज्ञान जैसे बाबा भी कहता है बच्चे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान का सागर है। आत्मा परमात्मा दो अलग अलग है ना, तो वो ज्ञान का सागर है और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और स्वरूप है तो फिर ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? वो इसीलिए दिया जा रहा है कि आत्मा में ज्ञान सुप्त अवस्था में है, अंदर छुपा हुआ है। तो बाबा बैठ करके रोज उसको ठोकता है। कैसे ठोकता है? कहते हैं 100 सोनार की एक लोहार की, लोहार की मार होती है ना, लोहार का हथौड़ा पड़ता है तो एक से दो टुकड़े हो जाते। सोनार जब मारता है, अक्कसाली का जब मारता है तो वो धीरे 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 ठोकता है तो वो सोना सोना जा करके एक आभूषण बनता है। समझ में आती है? तो आभूषण बनता है। ऐसे ही बाबा भी रोज बैठ करके, भले वो यही बोलता होगा कि बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, बच्चे तुम आत्मा समझो, आत्मा समझो, यही पहला पाठ यही अंतिम पाठ। परंतु क्यों ऐसे बोलता है? क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं शरीर के अंदर इतनी फंसी हुई है इन डेप्थ गहराई में, उसको निकाल, बाबा जैसे निकाल रहा है बाहर रोज 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 रोज, 78 साल हो गए वही बाबा बोल रहा है। लोग बोलते हैं, कई हमारे भाई बहने बोलते हैं कि आत्मा आत्मा, परंतु वो आत्मा जागृत हो जाए ना, ऐसे बोला गया कि उत्तिष्ठत उठो जागृत जागो, पर यहाँ हम देखते हैं उठाओ तो फिर सो जाता है, जगाओ तो फिर सो जाता है मनुष्य। तो इसीलिए ये जो मनमना भव है कि हम जो संकल्प में गहरे चले गए हैं कि देह देह के संबंध, अभी भी मैं कईयों से बात करता हूँ, प्रजापिता हमका हमारा संगम युग का एक लक्ष्य है कि हमको बाप समान बनना है। लक्ष्मी नारायण बनना, नरो नारायण, वो कल की बात है। आज क्या बनना है? हमको बाप समान बनना है, माना ब्रह्मा बाप जैसा बनना है। तो ब्रह्मा बाप जैसा बनना बहुत मुश्किल है ना, क्या सहज है? शिव बाबा जैसा बनना सहज है, ब्रह्मा बाप जैसा बनना बहुत मुश्किल है। वो कैसे? आप देखेंगे कि भारत के इतिहास में सबसे पहले जो शुद्धता की प्रवृत्ति हुई, पवित्रता की प्रवृत्ति हुई, वो हुई हमारे रामकृष्ण परमहंस से। आप सब जानते हैं रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरु रहे, रामकृष्ण परमहंस ने एक पवित्रता की संकल्प दुनिया को दिया। वो अपनी पत्नी को शारदा माँ बोला है ना, उसने शारदा माँ बोला। उससे फिर गांधी ने सीखा, महात्मा गांधी ने, उसने अपनी पत्नी को कस्तूरी बा माँ बोला। उसके बाद एक संत निकले, जो वो भी कलकत्ता या बंगाल के ही थे, अरविंदो घोष, जिनकी पत्नी थी मृणालिनी। उन्होंने भी पत्नी को उस शब्द से संबोधित करके, वो रही कलकत्ता में और वो गए पांडिचेरी में। जीवन पर्यंत वो दोनों, पत्नी यहाँ रही पति वहां रहा, तो वो भी पवित्रता का बल दिया। तो ऐसा माँ शब्द बोला। परंतु यहाँ कल रात आप सुन रहे थे, श्री ब्रह्मा बाबा के बारे में बोला जा रहा था, या यज्ञ में जो परिवर्तन आया वंडरफुल, संकल्पों में जो परिवर्तन आया, सोच में जो परिवर्तन आया, ऐसा परिवर्तन सारे विश्व के इतिहास में और कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। जो संकल्पों का परिवर्तन आया, वो क्या परिवर्तन? आत्मा आत्मा भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई का जो बोलते थे लोग, हिंदू चीनी भाई भाई, या ऐसा हिंदू मुसलमान भाई भाई, पर बाप कौन है पता नहीं ना, बिना बाप के भाई भाई बोलते रहे, और एक बाप को पैदा हुए बच्चे भी भाई भाई आज आपस में झगड़ते लड़ते मरते मारते रहते हैं। तो परंतु बाबा ने ये जो ज्ञान दिया कि भाई आत्मा आत्मा भाई भाई, और फिर आत्मा जो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनती है वो फिर भाई बहन हुए, भाई बहन हुए। तो इस यज्ञ में न ऐसा कोई नहीं सोच सकता, वो परिवर्तन ब्रह्मा बाप और ब्राह्मणों के अंदर आया, और वो श्रेष्ठ परिवर्तन यह था, जैसे कल रात आपने सुना होगा कि बाबा एक पारिवारिक व्यक्ति था, एक गृहस्थ था, सांसारिक व्यक्ति था, तो उनकी युगल थी, बच्चे थे, तो वो जो संबोधन करता था बाबा अपनी युगल को, बच्ची वो कहती थी बाबा, तो ये भी वंडर था, बच्ची क्या कर रही हो, तो कहता था बाबा सेवा कर रही हूँ। तो इतना वंडरफुल परिवर्तन ऐसा सारे विश्व में कहीं भी नहीं देखने को मिलता है, यह सोच में परिवर्तन। तो बाबा कहता है ऐसे सोचो जैसे मैं सोचता हूँ, माना ब्रह्मा बाप सोचता है, शिव बाबा की सोच ब्रह्मा के माध्यम से हमको मिलती है ना, तो शिव बाबा सोचते हैं कि नई सृष्टि की रचना हो, तो ब्रह्मा कहता है हाँ मैं आपके साथ हूँ, तो ब्रह्मा के साथ फिर ब्राह्मण कहेंगे हाँ बाबा हम आपके साथ हैं। परंतु ये एक मेहनत की बात है, पहले शिव बाबा ने इतना पावरफुल सकाश पावर दिया कि वो दादियां वो दादाएं बाबा, इतना परिवर्तन आया उसका कोई हिसाब नहीं। तो वो पत्नी को बच्ची कहे, बहू को बच्ची कहे, बहू बाप को ससुर को बच्ची कहे, जो बहू ससुर के सामने कभी पल्लू नहीं निकालती थी, उनकी फोटोग्राफ से आप देखेंगे तो वंडर लगता है कि ये कैसे परिवर्तन इतना जबरदस्त आया। तो ये था मन मनाभाव का मंत्र का प्रभाव, कैसे भगवान ने बैठ करके आत्माओं के मन को परिवर्तन किया। अभी वैसा बाबा कहता है बच्चे तुम भी मन मनाभाव, माना तुम भी अपने संकल्पों को ऐसे बदलो, परिवर्तन करो, परंतु वो मेहनत है। अब जब मैं एक उदाहरण ये देना चाहता था कि ब्रह्मा बाप में इतना परिवर्तन आया कि उन्होंने सारी संपत्ति, कल कहा गया तीन माताएं पांच बहनें, उनके नाम पर एक ट्रस्ट बनाया, बाबा ने सारी संपत्ति उनके नाम पर रखी, और जीवन पर्यंत कभी बाबा ने पैसे को हाथ नहीं लगाया ब्रह्मा बाबा ने। तो वो जो संपत्ति का उन्होंने कहा कि आप कभी ये नहीं सोचा कि एक लड़का है, दो लड़के हैं, दादा किशन दादा नारायण, और तीन बच्चियां हैं, सारा ये कैसे होगा? तो मैं आज कई यहाँ, आप भी यहाँ कई बाप लोग बैठे हुए हैं, अम्मा भी हैं, तो हमारे पास एक बाप आया, वो बोलने लगा कि मेरा जो लड़का है, एक ही लड़का है, लाखों की प्रॉपर्टी है, पर लड़का नालायक है, गधा है, बेवकूफ है, ऐसे ऐसे बोला। तो मैंने उससे कहा कि जब नालायक है तो तुम ये लाखों की प्रॉपर्टी देगा तो दो दिन में खत्म कर देगा। तो कहा वही तो रोना है, इसीलिए मेरे को कई बार मैं बेचैन हो जाता हूँ, नींद खराब होती है। तो मैंने कहा मेरे पास एक लड़का है, गोरा गोरा गोल गोल, समझा? मेरे पास एक लड़का है गोरा गोरा गोल गोल, समझ गए? और उसको तू दत्तक लेना, समझा? उसको तू दत्तक लेगा तो तेरा बेड़ा पार होगा। तो उसको भी लगा ये बात तो सही है, ले तो सकते हैं। बोला कौन है? मैंने कहा शिव बाबा। तो वो बोला नहीं, बात ऐसी नहीं थी, वो बदल गया। तो हम बाप लोग जो होते हैं ना, तो वो नालायक है या बेवकूफ है, प्रॉपर्टी उसको ही छोड़ना चाहते हैं। मैंने देखा है, और मैंने कई ऐसे परिवार से देखा जिनको बच्चे नहीं होते हैं, उनको मैं बहुत कोशिश करता हूं कि वो सेवा में लग जाएं, अपना तन धन इसमें लगाएं, परंतु नहीं लगाते हैं। यहां जो बैठे हैं वो अनुभव करना इस बात को जो मैंने किया है, क्यों, जबकि हम रोज मनमना भाव बोलते हैं यही अपन को आत्मसमझ, बाप को याद करो, परंतु प्रैक्टिकल यह है कि जैसे ब्रह्मा बाप ने इन दादियों ने कुछ आगे पीछे सोचा ही नहीं और अपने जीवन को इसमें लगा दिया, अपने तन को लगाया, मन को लगाया, धन को लगाया, परंतु हम नहीं लगा हम नहीं लगा पा रहे हैं ऐसा। हम गृहस्थ जीवन से उठने के लिए कई बार सोचना पड़ता है, और सोचते भी हैं तो इतनी शक्ति नहीं हमारे पास, ऐसा लगता है। चांसेस बाबा बहुत देता है सेवा के, परंतु हम उन चांसेस को लेते नहीं हैं, उपयोग नहीं कर पाते। हो सकता है कभी मैं सोचता हूं ऐसे कि बाबा जो बोलता है बच्चे तकदीर में नहीं होगा तो तदबीर क्या करेंगे, ऐसा कभी बोलता है, और मेरे को सोच चलती है तकदीर तो आप बनाएंगे ना बाबा, तो कहता है नहीं बच्चे, तकदीर को बनाने की कलम मैंने आपके हाथ में दे रखी है, तुम अपनी तकदीर को श्रेष्ठ तकदीर कितनी भी लंबी रेखा खींच सकते हो। आधार है ज्ञान, आधार है योग, आधार है ब्राह्मण परिवार, आधार है सेवा। इसीलिए जब भी हम ये सोचते हैं कि मन मना भव, माना हमारे संकल्प ब्रह्मा बाप के समान होने चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाप ने बेहद, जैसे कल था ना, कल आपने कोई ने कहा कि ब्रह्मा माना बेहद का बाप, ब्राह्मण माना बेहद के बच्चे, तो बेहद का बाप क्या सोचता है कि बेहद का परिवार हो, बेहद की सेवा हो, क्यों, क्योंकि बहुत जल्दी से जल्द सतयुग की स्थापना हो जाए, कलयुग विनाश हो जाए, जल्द से जल्द होना चाहिए, परंतु कैसे होगा, क्योंकि जो आगे हैं वो आगे जो रहते हैं उनको पहले करके दिखाना होगा, जैसे दादियों ने दिखाया, ब्रह्मा बाप ने दिखाया, क्योंकि एक श्लोक आता है यद्यद्दाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः, जो आगे रहते हैं फोर फ्रंट में, जैसे हम पहले ज्ञान में आ गए, जो ज्ञान में पहले आए माना वो निमित्त बन गए, जब वो निमित्त जो होते हैं, निमित्त यदि आगे बढ़ते हैं तो पीछे वाले भी आगे बढ़ते हैं, निमित्त वहां का वहां रुके रहेंगे तो पीछे वाले भी वहां का वहां रुके रहेंगे, और कभी कभी तो ऐसे होता है निमित्त के कारण से पीछे वाले जो थक गए तो वापस फिर कलयुग में चले जाते हैं, जिसको बाबा कहता है बच्चे भागंती होते और फिर बदतर बन जाते और ही बुरे बन जाते। इसीलिए ये सोचना चाहिए कि हम पहले आए ज्ञान में तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम आगे बढ़ें, और बाबा के संकल्पों को हम कहाँ तक साकार कर सकते हैं। पहले ऐसे होता था, हर एक ये कहता सुनाई दिया हमको कि हमारा एक ही मकसद है जीवन का कि हम हमारे बाप ने जो कार्य आधा छोड़ करके गया वो हम पूरा कैसे करें। अब हम भी बेहद के बाप के बच्चे हैं ना, बाबा बाबा ही बोलते हैं, यहाँ कोई गुरुजी, पंडित जी, महाराज बोलने का शब्द है नहीं, हम भगवान को, ब्रह्मा को बाबा बोलते हैं, तो बाबा बोलते हैं तो हमारा कार्य हो जाता है कि हम ब्रह्मा बाप के, जैसे कहते हैं ना, कदमों में कदम रखें, तो वो कदमों में कदम रखने के लिए पहले ये होना चाहिए कि हम हमारे संकल्पों को कहाँ तक बाबा के संकल्पों से जोड़ पाते हैं। बाबा जैसे सोचता है हम भी ऐसे सोचें, बाबा जैसे सोच करके करता है हम भी वैसे करें, ये दो, सोच और कर्म, दोनों का ताल होना चाहिए। तो ये जब मिलाप होगा संकल्पों का और कर्मों का बाप के साथ, तो हम बाप समान बन सकते हैं, और बाप समान बनेंगे तो बाप के परिवार में जाएंगे ना, परिवार में जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं कई बार कहता कि ये हमारी एक नाटक मंडली है। ये जो यज्ञ शुरू हुआ वो कैसे हुआ? ओम मंडली से हुआ। ओम मंडली जिसको बोलते थे, 1952 तक ये ओम मंडली ही था, 36 से। बाद में जब माउंट अबू में ये स्थानांतरित हुआ तो बाबा ने धीरे धीरे इसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा। बाद में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय हुआ, अब ब्रह्मा कुमारी इतना ही बच गया। तो ऐसा जो बाबा है, तो बाबा ने हम बच्चों को आगे रखा, ये ब्रह्मा कुमार, ये ब्रह्मा कुमारी, इनका है ये केंद्र, इन्हों के द्वारा चलता है और ये इनके लिए ही चलता है। जैसे कहते हैं ना, गवर्नमेंट के लिए भी कहते हैं, ये गवर्नमेंट प्रजा की है, प्रजा के लिए है। ऐसे ही ये भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बच्चों का है और बच्चों के लिए ही है। बच्चे ही इसको चलाते हैं, इसलिए चलाते हैं कि ये चलते चलते अपने मंजिल तक पहुंच जाए। मंजिल क्या है? मंजिल यह है कि जिसको वो जो आता है ना, जित जित देखूं तित, जो दिखता है वो वैसा ही भगवान के जैसा ही दिखता है। अंत में जो शास्त्रों में हम जब ज्ञान में आए तो ऐसा समझते थे ये ज्ञान बिल्कुल ही शास्त्रों के विरुद्ध में है। मैं ऐसा सोचता था, ये क्या ज्ञान है, बिल्कुल विरुद्ध में देते हैं शास्त्र के। पर धीरे धीरे अभ्यास करने पर आया, पता पड़ता है कि नहीं, यहाँ जो गहनता, हम गहराई में जाते हैं तो धीरे धीरे हमको ये मालूम पड़ता है कि यहाँ की अनुभव की बातें, अंत के अनुभव की बातें उन्होंने शास्त्रों में लिखी है। आप देखेंगे कई बातें, जब आत्मा के बार जब हमको ये ज्ञान मिलता है तो शास्त्रों में ये ज्ञान है कि आत्मा निर्लेप है। यहाँ आते हैं तो लगता है नहीं, आत्मा को ही लेप छेप होता है। तो अब पता पड़ता है कि यस, ये बात बराबर है। परंतु अब बाबा क्या बोलता है कि बच्चे, तुम जो आत्मा परिपक्व बनते हो, तुम्हारे ऊपर किसी माया का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तुम विकारों की छाया से दूर ईश्वर की छत्र छाया में रहो, तुम एक रस स्थिति में रहो। तो ये जो स्थिति है ये है निर्लेप स्थिति। अब ऐसी निर्लेप स्थिति में, जैसे आज हम दादी जानकी को देखते हैं, गुलजार दादी को देखते हैं, ये जैसे कहते निर्लिप्त स्थिति है इन लोगों की। बाहर की दुनिया का कोई इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कौन मिनिस्टर है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन प्रेसिडेंट है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सोचते हैं, अच्छा ये प्राइम मिनिस्टर बना क्या, अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ नहीं होगा। और उनको ये ख्याल ही नहीं है, उनको पता है कि अब जो भगवान आया हुआ है वो अपना कार्य पूरा करके वापस जाएगा, कोई दूसरा इधर वो बनता है, इधर उनसे कोई। ये है निर्लिप्त अवस्था, क्योंकि हम बाह्य जगत में बहुत जुड़े हुए हैं, उससे टैग्ड है, और जितना उससे लगे रहेंगे इधर का लगाव उतना नहीं रहेगा, जितना इससे लगे रहेंगे उधर का लगाव कम होगा। हमारी जो सोच चलती है वही चलती है। सब हम लोग टीवी देखते हैं, सिनेमा भी मैं समझता हूँ कुछ लोग देखते होंगे, टीवी तो देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, बाहर की दृश्य देखते हैं, तू कौन, मैं कौन, तेरा मेरा, इसमें अभी भी फंसे हुए हैं। सच बात है ये। तब आप बताइए हम निर्लिप्त अवस्था में कैसे आएंगे? ऐसी स्थिति, जैसे कई इस बार भी बाबा एक अव्यक्त मुरली में कहा जनवरी की, कि आपने लास्ट के 2 साल ऐसे देखे, बाबा सुनते हुए भी नहीं सुनता था, करते हुए भी जैसे निर्लिप्त होकर के करता। ये आत्मा की एक स्थिति है कि बाहर की बातों का निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय लाभ हानि से ऊपर उठ करके जो हम मनुष्य रहते हैं, ऐसा जीवन हमारा बन जाए, वो हो गया आत्मा की निर्लिप्त स्थिति। तो वहां जो कहा गया ना कि आत्मा निर्लेप है, वो अब बराबर उतरता है। बाकी है आत्मा ही पुण्यात्मा बनते हैं, हम ही पापात्मा बनते हैं। बाकी सतयुग त्रेता में भी देखेंगे जैसे नीचे नीचे उतरते हैं ना, अभी हमारी चढ़ती कला है। इसीलिए सोच जितना यज्ञ के लिए चलती है उतना बाहर से कम होते जाती है। इसीलिए वैसा करने के लिए, जैसे कल एक भाई जी क्लास करा रहे थे तो कहा उन्होंने कि मुरली कितनी बार पढ़ना चाहिए, 21 बार पढ़नी चाहिए। हमको तो एक बार पढ़ने को भी टाइम नहीं मिलता है, सच्ची बात यह है, कहाँ पढ़ेंगे। तो इसीलिए नहीं, वो जितना उसकी ओर रुझाव लगाव होता जाता है, मुरली पढ़ना मुरली पढ़ना मुरली पढ़ना, मुरली के वाक्यों में रमण करना, मुरली में रमण, तो वो जितना जितना उसमें रमण करते जाएंगे ना, उतना उतना धीरे 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 हमारा बुद्धि योग बाहर की दुनिया से हटता जाएगा और मन इसमें रमता जाएगा। वो मेहनत है। और फिर हमने देखा ये शरीर है, इसको कहा, वो कह रहे थे डॉक्टर जी कि ये शरीर है ना, ये जरूरी है हमारे लिए, इसका स्वास्थ्य, इसके, जैसे कहते हम भगवान का ध्यान करो तो भगवान आपका ध्यान रखेगा, ऐसे ही आप शरीर का ध्यान रखो तो आपको आपका ध्यान शरीर रखेगा। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ऐसे बोला गया कि धर्म साधना करनी है, दिव्य गुणों की धारणा करनी है, दिव्यता को अपनाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि इस शरीर को साथ रखना चाहिए। तो ये शरीर साथ दे, इसके लिए खान पान रहन सहन के लिए परहेज होना चाहिए, जैसे बाबा का रहा, दादियों का रहा, हमने देखा, तभी तो उनकी उम्र आज सबसे, देखिए कोई 90 साल में, हमारी रतन मोहिनी दादी 90 ईयर ओल्ड है, दादी जानकी 98 है, गुलजार दादी 84 चल रहा है, तो इतनी उम्र होते हुए भी ये सेवा में संलग्न है। माना इनका तन ये स्वस्थ रहने का कारण है कि ये ईश्वरीय सेवा में लगा हुआ है। बाल बच्चों की सेवा में होता है ना, 60 में ही उसको कहते 60 को लगी लाट, रोना चालू हो जाता है, घुटने वो दर्द हुआ, ये दर्द हुआ, पहले तो माथे में दर्द होता है। इसीलिए बाप समान, जैसे बाबा को कहते थे बाबा 93 में, तो वो एक जैसे फुर्त यंग व्यक्ति थे। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि एक तो पहले का सात्विक जीवन और बाद में शिव बाबा के प्रवेश के बाद और ही सत्वप्रधान जीवन बन गया, श्रेष्ठ जीवन बन गया। इसीलिए हमारा जो बुद्धि योग है वह बाहर की दुनिया में है, तो मनोयोग कहाँ लगेगा, हम मन मनाभाव कैसे बन पाएंगे? इसलिए मन मनाभाव बनना है तो बुद्धि योग, हम ये नहीं कहते बाहर की दुनिया से निकालो, है ना, कोई काम छोड़ो क्रोध छोड़ो, ये तो शास्त्रों में भी बोला गया, ऐसे काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, ये है। इसके लिए और भी कहा गया कि नरकस्य त्रिविधम, नरक के तीन द्वार है, काम क्रोध लोभस तथा तस्मादेत त्रयम, इन तीन को त्यागना चाहिए। कितने वर्षों से बोला पर छोड़ा कौन? कोई भी नहीं छोड़ा, पर हम अब छोड़ते हैं क्योंकि बाबा वैसी सोच दे रहा है, शक्ति दे रहा है। क्योंकि कहा जाता है बाबा ज्ञान ही नहीं देता है बल्कि ज्ञान को धारण करने की शक्ति भी देता है, ये विशेषता है। नॉलेज इज माइट, नहीं, नॉलेज प्रोवाइड्स द माइट, ज्ञान शक्ति, ज्ञान की शक्ति के आधार पर ही देखिए आज हम यहां बैठे हैं सब लोग, ये ज्ञान की शक्ति है। तो ज्ञान जो शक्ति है उसका अनुभव तब होता है जब वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आता है। इसीलिए ये तन को भी ना ईश्वरीय सेवा में जितना संभव नहीं अधिक से अधिक लगाना चाहिए, वो ज्ञान में लगे, योग में लगे या सेवा में लगे, क्योंकि ईश्वरीय सेवा बहुत है और हमको टाइम नहीं है। लोगों को जाकर के कहते आप आश्रम में आओ तो वो कहते हमारे पास समय नहीं है। अब हमारे भाई बहनों की भी हालत ऐसी है कि उनको कहो कि एक के बजाय दो बार क्लास में आओ, नहीं, जैसे टाइम होता है ना, समझिए कहीं 6:30 बजे क्लास शुरू होती है और 8 बजे पूरी होती है, तो हम देखते हैं 50% लोग 7:30 के तक आते, 7:30-7:45 तक, क्योंकि बाबा जब बोलेगा ना मीठे मीठे बच्चों, वो याद प्यार देता है तब आकर के, चलो हमारा भाग्य है कि हम याद प्यार तो सुन लेते हैं, मुख्य धारणा सुन लेते, क्वेश्चन आंसर सुन लेते। कई भाई बहने नोट डायरी में नोट करते हैं, वो डायरी सेंटर पे ही रख के जाते हैं, कहते बाबा आप पढ़ लेना बाद में। ऐसी हालत हमारी है, क्योंकि हमको बाद में टाइम किधर है पढ़ने को, लिखा कई वो बैग में रखते हैं, बैग में ही रहती है, दूसरे दिन जब क्लास में आते हैं तभी उसको खोलते हैं, फायदा क्या हुआ? फायदा तो कुछ नहीं हुआ। फायदा तब होगा जब उसको बारंबार हम पढ़ें, उसका मनन चिंतन करें, तब फायदा होगा। क्योंकि एक बार एक बात बार बार कोई पढ़ता है ना, तो वो जैसे कि उसके अंदर अंदर जाती जाती है, अंदर वो जमती जाती है, उसका स्थान बनता है। क्योंकि बाबा ये बोलते, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तो एक बार हम जाग जाएंगे कि भाई हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है। क्या है आत्मा? आत्मा पवित्र है, आत्मा श्रेष्ठ है, आत्मा ज्योति। हमें आत्मा है, आत्मा है नहीं, आत्मा क्या है? जैसे दादी जानकी बार, मैं कौन, मेरा कौन, यही तो समझना है सारे कल्प के अंदर के इस संगम युग में। इसके सिवाय और कोई नहीं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो ऐसा ये सिर्फ आत्मा नहीं है, आत्मा क्या है? अजर अमर शाश्वत नित्य शक्ति है। इसमें इतने गुणों का भंडार है, इतनी शक्तियों का भंडार है, वो सारा का सारा हम धीरे धीरे अनुभव करेंगे तब कोई बात बन सकती है, तब कोई फायदा हो सकता है। इसीलिए ये धारणा चाहिए कि इसे बाबा हमको ये बोला अपन को आत्मा समझो, मन मना भव महामंत्र क्यों बनता है? क्योंकि ये दुनिया है ना, ये चलती ही सोच पर है। द वर्ल्ड मूव्स ऑन द थॉट्स, विचारों के आधार पर चलती है। किसी व्यक्ति के श्रेष्ठ स्थान पर रह करके कोई व्यक्ति श्रेष्ठ विचार देता है तो विचार बहने लगते हैं संसार में। ऐसे ही आप देखेंगे कल ब्रह्मा कुमारियों को जो नकारते थे, नहीं बाबा ब्रह्मा कुमारी माना, हाथ जोड़ते थे, अभी नहीं, वो ब्रह्मा कुमारी के पास आके हाथ जोड़ते हैं। चेंज हो गया ना, समय बदल गया ना। पहले जो जो हमने देखा, एक एक कलेक्टर थे, बहने वहां वो व्हाइट साड़ी की थी, तो बहने व्हाइट पहनती हैं, तो जैसे ही उसके दरवाजे पे गए तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। तो ये सवेरे सवेरे व्हाइट साड़ियों का मुंह कौन देखेगा, ऐसा बोलते हैं। उनदम वो एक टाइम था, वो समझते थे कि ये कोई और ही है, एक समय था। पर अब समझते हैं नहीं, ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इन्होंने अपना घर बार का त्याग किया हुआ है। कई बार ऐसे लगता है कि उनके हम जो हैं, हमारे से ज्यादा वो हमको समझते हैं कि बहुत अच्छे हैं ये, हम अपने हमारी वैल्यू नहीं समझते हैं। मैं कई बार कहता कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हमारी अपनी वैल्यू नहीं समझते, हमारी सोच में ये आना चाहिए। मैं कह ये जो शास्त्रों में ऋषि मुनि का गायन है ना, है ना, त्रेता युग में आपने देखा राम के समय पर, राम अपनी 12 साल की उम्र में विश्वामित्र के साथ निकल पड़े, क्यों? कि वो ऋषि मुनियों के यज्ञ में राक्षस बाधा डाल रहे थे। वो ऋषि मुनि और कोई नहीं है, हम ही है। क्यों? गायन क्या है कि सप्त ऋषि, वो जो ऋषि होते थे वो सात समुद्र पार अर्ली मॉर्निंग जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में। वो ब्रह्म मुहूर्त में जाने वाले ऋषि कौन है? सात समुद्र पार हम जाते हैं। वो कहते थे ब्रह्मा, ये जो ऋषि होते हैं मुनि होते हैं, ये सवेरे सवेरे ब्राह्मी मुहूर्त में तीन लोकों की यात्रा करते हैं, वो कौन है? उनके पास तो स्वर्ग भू पाताल है, जबकि न स्वर्ग है न पाताल है, भूमंडल एक ही है, एक ही भूमंडल है। आप गायत्री मंत्र में देखेंगे भू भुव स्व ऐसे चलता है वो। तो हम हैं जो साकार लोक सूक्ष्म लोक परलोक की यात्रा ब्राह्मी मुहूर्त में करते हैं, और कोई नहीं करता है सारे विश्व में। हम ही जानते हैं कि यहाँ से कुछ ऊपर सूक्ष्म लोक है जहाँ अव्यक्त ब्रह्मा है, उसके ऊपर शांति धाम है जहाँ शिव बाबा रहते हैं, और ये लोक है जहाँ हम है। तो ये तीन लोकों का भ्रमण सवेरे सवेरे कौन करता है? हम करते हैं। तो ऋषि मुनि, आप यदि ध्यान से, एक चित्र है आपने देखा है और भी देखिए, आप ध्यान से देखेंगे कि द्वापर सतयुग त्रेता तो बीत गया, द्वापर और कलयुग, यहाँ कहीं एक चित्र ऋषि का आता है, द्वापर में नहीं आता है। द्वापर में तो कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम सीता, ऐसे बाबा लाया, एक के बाद एक पूजा हुई उनकी, है ना। तो बाद में तत्व पूजा, उसके बाद कहीं ऐसा बाबा ने एक ही चित्र दिखाया है। तो वो ऋषि मुनि हम है। त्रेता में द्वापर में कोई ऋषि मुनि नहीं था, हम ही ऋषि मुनि हैं जो 3:30 बजे, कई माताएं तो 3 बजे 2 बजे भी तपस्या धाम में चली जाती है। इतना त्याग, इतनी तपस्या उनकी होती है। बाबा के कमरे में देखो तो कई बैठे रहते, 2 बजे ही बैठते। तो ये जो तपस्या है सारी दुनिया में, कोई किसी को भी आप बोलिए कि सवेरे 4 बजे उठना है तो वो हंसेगा आपके ऊपर, 4 बजे भी कोई उठने का टाइम है क्या, बोलेगा। क्योंकि हम तो सूर्यवंशी हैं, सूर्य निकलने के बाद वो बोलेगा उठ रे मैं आ गया, तब उठने वाले हैं। तो हम ऐसे नहीं, हम ब्राह्मी मुहूर्त में उठते हैं ताकि हम ब्राह्मी मुहूर्त में उठ करके ये तीनों लोकों का भ्रमण करें। वो ऋषि हम हैं। ऋषि जो होते हैं वो सपत्निक हैं, पत्नी के साथ पवित्र रहने वाले हैं, तो वो भी हम ही हैं पत्नी के साथ पवित्र रहने वाले। सारी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि हम सपत्निक पवित्र रहते हैं या सपत्निक ब्रह्मचर्य में रहते हैं, जोड़ी जोड़ी ब्रह्मचर्य में रहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं स्वीकार करता है। लोग घबराते ही ब्रह्मा कुमारी में इसलिए हैं कि यहाँ ब्रह्मचर्य की बात बोलते हैं। परंतु वो ऋषि, वो मुनि, वो योगी, वो तपस्वी, वो हम हैं। ऐसा हमारा मूल्य हमको अधिक जानकारी होगी तब मनमना भाव हो सकेंगे, तब हमारा मन उसमें लगेगा कि हम कोई कम नहीं है। तो हमारी ये धारणा है कि मन मना भाव का तात्पर्य है कि मन हम इतना हम हमारे संकल्पों को इतना ऊंचा उठाए, इतना ऊंचा उठाए कि हम बाप समान बन जाए। क्योंकि ब्रह्मा बाप की सोच बहुत ऊंची थी, बहुत अच्छी थी, श्रेष्ठ थी, जो अभी भी कार्य कर रही है। अभी भी ब्रह्मा बाप कहता है बाबा गया नहीं है, तुम बच्चों को साथ लेकर के ही जाएगा। आप कहां भी हैं, आप चाहो या न चाहो, वो तो हमको ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं। तो जाना ही है तो बाबा कहता है खुशी खुशी से चलो ना। तो खुशी से चलना है तो ये देह देह की दुनिया से बुद्धियोग हटाना, ऐसा बोला जाता है। पर हम कहेंगे हटाने के बजाय, तोड़ने के बजाय, यदि कोई कहीं लगाता है तो वो पहला काम उसका है। बुद्धि को लगाना आना चाहिए, तोड़ना नहीं। तोड़ना मुश्किल है, तोड़ना मुश्किल है, ये आप भी जानते हैं। इसीलिए सोच ये चलनी चाहिए कि हम कितना यज्ञ की सेवा में लग जाएं। यह जो अविनाशी कहते हैं ना, राज सूय अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, तो ये जो गीता ज्ञान यज्ञ, यज्ञ में हमारा तन भी लगे, धन भी लगे। हम योग करते हैं बस, नहीं, वो योग तब जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा तन होगा, वहां तुम्हारा मन होगा। समझ में आया? जब तक तन लगना, जैसे अभी देखिए हमारा तन लगता है 2 बजे उठ जाते हैं, हमारा तन लगता है 6 बजे 6:30 बजे क्लास में चले आते हैं, ये तन लग रहा है। और तन लगने से 2 के स्थान पर समझिए, यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट हो गई, यहाँ क्लास है 5 बजे आ जाओ, आए देखा कोई नहीं है चला गया, और एक आया वो देखा कोई नहीं है वो चला गया, तो फिर बैठेगा कौन? इसीलिए कहा जाता है ये जना ये ते पंथा ये न महाजना गता। रास्ता वही बनता है जिस रास्ते से बहुत लोग गुजरते हैं। ऐसे ही केंद्र में हम रोज बहुत लोग जाएंगे तो बहुतों के बीच में और नए नए भी घुस जाएंगे। नया अकेला जाने में घबराता है, इसीलिए हम ये पूरी कोशिश रखें कि हम किसी भी हालत में क्लास अटेंड करेंगे तो वो क्लास हमारे में बल भरता है, और वो उससे ये लगता है कि ये तन हमारा यज्ञ सेवा में लग रहा है। और फिजिकल जो अब ये देखिए यहाँ हम आते हैं, कोई रोटी बनाने में लगा हुआ है, कोई डायमंड हॉल की सेवा में, कोई कॉन्फ्रेंस हॉल की, कोई वो भवन की, कोई ये तो सेवा करते हैं ना, तो तन लगता है। तन लगता है तो योग भी अच्छा लगता है, तन के बिना योग नहीं लगेगा। शरीर झुकना चाहिए, शरीर झुकेगा तो मन भी झुकेगा, शरीर के बिना मन नहीं, शरीर, क्योंकि हम शरीर किसी को देते हैं, सारा दिन धंधा धोरी में लगाया, बीवी बच्चों में लगाया, पति बच्चों में लगाया, और कहे मैं फिर योग करता हूँ, मन लगाता हूँ भगवान में, मन से याद करता हूँ, वो होगा नहीं पक्का। यदि ऐसा करना है तो यज्ञ सेवा में जुटना चाहिए, कि ईच वन टीच वन, एक एक को ज्ञान देना चाहिए, समझ देनी चाहिए, ताकि ये संख्या बढ़े। हमारी संख्या बहुत साल से हम देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के 10-11 लाख भाई बहने हैं। कितने साल से हम बोल रहे हैं, देखिए सोचिए इसके ऊपर एक बार, 10 लाख बोल रहे हैं। नहीं तो बढ़ना चाहिए ना, क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि हम बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है। इसीलिए वो व्यस्तता जो लौकिक में लगी हुई है, धंधे में आदि में, वो तो बाबा कहते हैं पेट शरीर निर्वाह के अर्थ कुछ करो, मना नहीं है, परंतु बुद्धि में होना चाहिए कि वहां भी हमको यह ज्ञान कैसे प्रचार प्रसार में लाना चाहिए, कैसे हम सबको यह ज्ञान दे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे सारे विश्व को ये ज्ञान मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्धी है, क्या भी है, कोई भी है, क्यों मिलना चाहिए? क्यों? क्योंकि हर एक धर्म में गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, ये आप कल्प वृक्ष का चित्र देखेंगे तो कल्प वृक्ष में ऐसे देखिए गोल्डन एज सिल्वर बीज तने में, मेन ट्रंक में गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन आया है ना, ऐसे ही वो टाल टालियों में भी, ब्रांचेस में भी गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन ऐसे बाबा ने रंग किया हुआ है, माना उनमें भी गोल्डन एज होता है। तो वो गोल्डन एज वाली आत्माएं यहाँ ज्ञान लेंगी, भले ब्रह्मा बाप को नहीं मानेंगी, मम्मा को नहीं मानेंगी, ब्राह्मण परिवार को नहीं, पर ज्ञान को मानेंगी कि मैं आत्मा हूं, मेरा बाप परमात्मा है, ये मानेंगी, ज्योति स्वरूप है ये मानेंगे। क्योंकि हम सर्वात्माओं के चित्र में दिखाते हैं कि वो अल्लाह नूर है, गॉड इज लाइट, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, एक ओंकार है, सब मानते हैं ज्योति है, तो मानते हैं तो कब मानेंगे? अब संगम युग पर मानेंगे ना। तो सारे विश्व के धर्म की आत्माओं को ज्ञान मिलना चाहिए, ज्ञान वो अपने अपने ढंग से उठाएंगे। जैसे अभी देखिए चाइना में कल वो भाई जी गए, तो चाइना में ज्ञान जा रहा है, तुर्की में ज्ञान जा रहा है, पाकिस्तान में ज्ञान जा रहा है ना, अभी अबू धाबी में, दुबई में ज्ञान जा, तो वहां के लोग भी सुनेंगे ना कुछ तो कुछ, यहाँ नॉर्थ में या साउथ में कैसे भी है, हर एक अपने अपने धर्म के स्थापना के लिए जो शक्ति भरनी है ज्ञान के आधार पर, वो शक्ति यहाँ ही भरेंगे संगम युग पर। तो सब माना कि 33 करोड़ देवताएं हैं, परंतु 33 करोड़ देवताओं के बाद जो आने वाले हैं उनको भी तो शक्ति चाहिए ना, क्योंकि बाबा कहता है जो भी आत्मा शांति धाम से नीचे आती है सारी आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, उनके हिसाब से सतो प्रधान होती हैं। हमारा हिसाब 84 जन्मों का है, उनका हिसाब अपने जन्मों का है, परंतु उनके पहले जन्म में वो सतो प्रधान होंगे। तो वो शक्ति हम बाबा के बच्चों से ही लेंगे। तो यदि हम उनको ज्ञान के ओर प्रेरित नहीं करेंगे, उनको ज्ञान में नहीं लाएंगे, तो फिर हमारा वो उलहना देंगे कि आपने नहीं बताया। इसीलिए हर तबके को मिलना चाहिए, तो कौन देगा? हम ही देंगे। यदि हमको ज्ञान देने की फुर्सत नहीं रहेगी तो फिर तो मुश्किल होगी। आप कहेंगे कि अब तो क्या हम दें न दें, पीस ऑफ माइंड चैनल दे रहा है ना, नहीं देगा। मैं आपको पक्का सुनाता हूँ कि जितनों ने भी पीस ऑफ माइंड चैनल या आस्था चैनल में शिव बाबा का ज्ञान सुना, उनको ये संस्था अच्छी है, इनका ज्ञान अच्छा है ये मालूम होता है, परंतु ये अक्ल बिल्कुल नहीं आती है। आप टेस्ट करके देखिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं इस शरीर का यजमान हूँ, मेरा बाबा परमात्मा है, मेरा वो बाबा है, मेरा बाबा है, मेरा बाबा है, ऐसा नहीं होगा जब तक वो आपसे मुखामुखी ज्ञान नहीं लेंगे, फेस टू फेस नॉलेज नहीं लेंगे, ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही चित्रों के माध्यम से, सिनेमा ये क्या, टीवी के माध्यम से कोई ज्ञान ले लेगा ऐसे, हाँ ज्ञान की ओर आकर्षित होगा, आकर्षण जरूर होता है। आज कई भाई आते हैं कि वो कहते हैं हमने आस्था में ब्रह्म अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी देखा, वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना तो आगे क्या चाहिए? वो तो हम सेंटर पर देंगे ना, केंद्र पर देंगे ना, गीता पाठशालाओं में देंगे ना, क्लासेस में देंगे ना। इसीलिए मनमना भव माना हमारा मन, माना हमारे संकल्प कितना कार्य कर रहे हैं विश्व सेवा के लिए, जैसे ब्रह्मा बाप के करते हैं, दादियों के करते हैं। आप देखेंगे उठते बैठते उन लोगों को यही सेवा होनी चाहिए। आप देखेंगे हमारा ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, ये कभी खाली नहीं रहते हैं। यहाँ के सेवाधारियों में इतनी बाबा शक्ति भरता है कि वो थकते नहीं है। हम लोग एक मेगा प्रोग्राम करके 15 दिन रेस्ट करते हैं, यहाँ रोज मेगा प्रोग्राम होता है, परंतु वो लोग नहीं थकते हैं, उनकी सेवा अथक है। ये कौन करा सकता है? वो बाबा करा सकता है। कैसे करा सकता है? उनके संकल्पों में बाबा घुसा हुआ है, बैठा हुआ है। तो इसीलिए आप सब ये ध्यान रखेंगे, मन मना भव का तात्पर्य इतना मात्र नहीं है कि हम अपन को आत्मा समझ के बस ध्यान में बैठे, नहीं, उसमें हमारा तन और धन दोनों भी लगने चाहिए। जितना ये अधिक से अधिक लगेगा उतना मन मना भव सिद्ध होगा और हमारा जीवन ज्ञान के अनुभवों से भरेगा, ज्ञान से नहीं, ज्ञान के अनुभव से भरेगा। सिर्फ ज्ञान कोई काम का नहीं है, उसका अनुभव चाहिए, क्योंकि अनुभव जब दूसरे को देंगे तो उसमें मजा आता है कि ये अनुभव है। तो ऐसा आप ज्ञान का अनुभव करेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए, परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।